نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير دور قرآن 2024 DQ 2024 اور آج ہم اس میں سے کریں گے پارہ نمبر 29 یقین ہی نہیں آ رہا مجھے کہ آج ہم پارہ نمبر 29 کہنے لگے میں سوچ کے بولی ہوں ورنہ شاید میں 24th پارہ بول دیتی ایسے لگا ہے کہ یہ سفر گزر گیا ہے کہ جیسے واقعی گزرنے کا حق ہے ایسے ہی ہماری زندگی بھی گزر رہی ہے اور ایسے ہی رمضان بھی گزر رہا ہے اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث بھی سچ ہے کہ قیامت کے قریب وقت تیزی سے گزرے گا اور آپ دیکھیے کہ آج 24 گھنٹے یہ تو نہیں ہوا کہ 24 کو اللہ نے 20 کر دیا اب 18 گھنٹے کا اصل مصروفیات گیجٹس پہلے ایک صحرا میں بندہ اٹھتا تھا اور میں آپ کو کہوں گی ضرور کبھی اس کو ایکسپیرینس کریے جب بھی کبھی بیک ہوم جاتے ہیں پاکستان یا انڈیا کسی گاؤں میں جہاں بھی کوئی بہت سہولتیں نہیں ہیں بجلی نہیں پانی نہیں وہاں جا کر ایک دو دن رہ کر دیکھیے اتنا لمبا دن ختم ہی نہیں ہوتا بلیو می اب جتنے فاصلے بڑھتے گئے جتنے لوگوں نے ماشاء اللہ سڑکیں روڈز اور یہ کچھ بنا لیا اتنے ہمارا وقت بھاگ گیا حالانکہ ہم کیا کر رہے ہیں کوئی بہت جھاڑو پوچھے تو کوئی کرتا نہیں ہے نہ ادھر اکثر لوگوں کے فیملیز ہیں اتنی کہ آپ ہر وقت دعوتوں میں رہیں لیکن مصروفیت بہت ہے آپ سوچتے ہیں نا کہ جو لوگ یہاں کسی وجہ سے نہیں آ پاتے بےچارے تو وہ گھر میں سوتے ہی رہتے ہیں سوتا کوئی نہیں ہے یہ تو آج کے پارے میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے پیار سے نبی کو کیسے سوتے سے اٹھا دیا تھا اور پھر وہ اٹھے تو پھر اٹھے ہی رہے آپ کو میں سچ بتاؤں کل پھر میں نے جب جا کر واپس پارا پچھلا دیکھا تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں میرا آج کا پورا وقت اسی پہ نہ لگ جائے میں نے بند کر دیا لیکن حقیقت ہے کہ واقعی سچ ہے اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا پچھلے پارے کی آخری صورتوں میں صورت تحریم تھی اگر آپ دیکھیں تو صورت مجادلہ سے لے کر صورت تحریم تک ہم نے صورتیں پڑھی جس میں صورت حشر میں ہم نے حزب اللہ اور حزب الشیطان کا فرق دیکھا اور ان کی کوششیں اور ان کی ایفرٹس اور ان کی زندگی گزارنے اور جینے مرنے کا انداز دیکھا پھر اسی طرح مسلم دشمن قومیں آپس میں اتحادی ہوتی ہیں کیونکہ کامن گول اسلام ہے تخ سب ہم جمیان و قلوب ہم شتہ یہ پیغام بھی صورت حشر کا تھا پھر قول و فعل کی تضاد کی مذمت صورت صف کے شروع میں تھی لما تقول ما لا تفعلون تو قرآن کی ایک ایک آیت کے ساتھ نہ دوستی کریں پیار سے اب یہ ایک جملہ میں بول رہی ہوں تو میرے دماغ میں پوری صورت اور اس کا حدود اربا اور یہاں یہ ہوئی تھی بات وہ آ رہی ہے اور اللہ کرے کہ ہمارا تعلق اس سے بھی زیادہ جڑ جائے قرآن کے ساتھ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سورت جمعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اور جو ٹیم بلڈنگ اللہ کے نبی کے ذریعے ہوئی یہ پوری سورت جمعہ کا موضوع تھا اور اہل ایمان کے لیے خالص توبہ فتوبوا الی اللہ توبتا نصوحا تو یہ صورت تحریم کا پیغام تھا اور ہم نے دیکھا کہ اخلاقی خرابیوں سے بچنے کے لیے اجتماعی کوششیں کرنی پڑے گی اگر یہ مسجد گندی ہو تو کوئی ایک بندہ صاف کرے کر بھی لے گا نا تو سارے دن کی کوشش کہ وہ تھک جائے گا لیکن پوری مسجد صاف نہیں ہوگی تو بالکل اسی طرح معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو آپ اور میں اکیلے نہیں روک سکتے بیٹا یہ نہ کیجئے نہ بیٹا ایسے نہیں کرتے یہ آپ تو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو کہتے ہی رہیں گے لیکن اس کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے کی بجائے لکھیے ہر جگہ ہمارے چمکنے سے اجالا ہو جائے قرآن کا نور ہر دل میں ہر ہاتھ میں پھر ایک ہم نے جو چیز سمجھنی ہے وہ کیا ہے کہ نیکیوں کے معاملے میں یہ جملہ جو اکثر ایٹ لیسٹ میں اتنا تو کرتی ہوں نا ایٹ لیسٹ میں دوپٹہ تو لیتی ہوں نا ایٹ لیسٹ میں گلے میں تو لیتی ہوں نا ایٹ لیسٹ میں نماز تو پڑھتا ہوں نا مسجد نہیں جاتا اس کو نکال دے یہ آج کے پارے کے تھیم کے ساتھ آپ کو ملے گا انشاءاللہ سینٹینس جو سب سے زیادہ چیز بات میں مجھے ہٹ کی اور وہ بی بی آسیہ کی دعا تھی رب ابن لی عندک بیتاً فی الجنہ آپ بعد میں میری بات کو سننے کے اس دعا کے لفظوں پہ غور کیجئے گا رب بھی اے میرے رب ابنی بنا لی میرے لیے اندہ کا تیرے پاس بیتن گھر فل جنہ بلاغہ کا حسن ہے اس میں عام جملہ پتہ کیا ہونا تھا رب ابنی لی بیتن آپ گرامر میں کہا میرے لیے گھر بنا دو پھر کہتے ہیں نا کدھر بناؤ کیا بناؤ یعنی بی بی آسیہ نے لفظ اندہ کا پہلے بولا بیتن سے کیوں اس لیے کہ بیت تو پہلے بہت بڑا تھا ان کے پاس کاسلز تھے شاتو تھے महल थे, इंग्लिश में तो कैसल कह ले, वो तो मोहल्लों में रहती थी, उनको इंदका चाहिए था। आज बड़े बड़े घरों में रहकर भी वो खुशी न मिली जो रब का कुर्ब पाकर उसके करीब होने से मिली। उसकी मार्फत को पाकर जो घर बनता है ना, वो चाहे हुजरात क्यों ना हो, जिसका तस्करा सही से पारे के शुरू में पड़ा कि वो हुजरे वाली हो। नबी की बीवियों के घर कैसे थे, कितने एकड़ में थे, कितने मिलियंस में थे, कितने मिलियंस में थे, कितने एम थे उनके साथ, एक कमरे का घर। तो वो घर जिसमें अल्लाह का कुर्ब मिले, वो फ्लैट, वो अपार्टमेंट, वो शेयरिंग का घर जिसमें अल्लाह के साथ इंदका वाली फीलिंग आए, वो उससे बहुत अच्छा है कि जिस घर में जाकर घर वाले भी एक दूसरे के करीब ना हो। छोटे घरों में लोग करीब होते थे तो एक दूसरे की दुख दर्द में साथ भी होते थे और समझ लेते थे। आज तो घरों में भी बच्चों को बुलाने के लिए इंटरनेट का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, उधर से कहते हैं फ़ोन करके बेटा आ जाओ नीचे। घरों में लिफ्टें हैं, उतने ही हम दूर हो गए। इसका ये नहीं मतलब कि बड़े घर अच्छे नहीं हैं, बड़े से बड़े घर बनाइए लेकिन उनको आबाद रखिए। एक एक कमरा जब तक घर का इस्तेमाल ना हो, हक अदा नहीं हुआ। बहरहाल इस कुर्ब को महसूस कीजिए। फिर ये जो आखिरी सूरत तहरीम में चार औरतें हमने पढ़ी, खास तौर पे बीबी आसिया, बीबी मरियम और इसी तरह से दो खवातीन, मिसिस लूत और मिसिस नूह। ये चार औरतों को जरा सा सामने रखें। आज मैं आपको एक बहुत बड़ा एक गुर सिखाने के लिए आई हूँ खवातीन होने के नाते। देखिए, दो बेहतरीन औरतें, दो बदतरीन औरतें इंजाम के अतबार से। वैसे तो हर बंदे के अंदर अल्लाह ने कुछ रखी है। कुरान पाक में अब तक हमने जितनी भी औरतों का जिक्र पढ़ा है, उम्मे मूसा, उख्ते मूसा और कहले बिनते शुएब, फिर इसी तरह से हजरत आयशा सिद्दीका, आप एक जुमला लिख लें कि कुरान में जितनी भी औरतों का तस्करा आया है, जिक्र आया है, वो सब अपनी नुमाया शख्सियत की हामिल थी। दे ऑल हैज देयर ओन पर्सनैलिटी, उनकी अपनी शाकिला थी, दे वर नॉट डोर मैट ऑफ देयर हस्बैंड। आज हमारे कल्चर में क्या कहते हैं कि औरत पाँव की जूती, नऊज़ुबिल्ला, काट के फेंक दीजिए इस जुमले को। और उनके शौहर किनके, हजरत लूत और हजरत नूह, अपनी बीवियों को इस्लाम लाने पे मजबूर नहीं कर सके। इट्स फाइन, लाइक राहविद्दीन, इट्स बिटवीन यू एंड योर लॉर्ड। वो दोनों उनको इस्लाम लाने पे मजबूर नहीं कर सके और फिरौन अपनी बीवी को इस्लाम से रोकने पे मजबूर नहीं कर सके। क्या पता चला, औरत मजबूरे कुल नहीं है। अगर शौहर मुजाजी खुदा है, अगर ये जुमला ठीक होता ना, तो फिरौन की बीवी तख्ते दार पे लटकने के बावजूद ये जुमला कहने पे मजबूर होती। फिरौन तो कहता ही था खुद को मजाजी खुदा, ये जुमला ना बोला करें कभी भी। फिल्मों में, गानों में, ड्रामों में सुन सुन के हमें समझ नहीं आता कि शिर्क करें आप। आपका मजाजी खुदा कौन है? सारे फिर हिंदुओं के भी 4 करोड़ मजाजी खुदा हैं, फिर वो बेचारे क्यों बुरे बने? अगर कृष्णा है, पहले तो हमें लात मनात उजा थे, और आज अगर कोई देवी है और फुला है, तो शौहर मजाजी खुदा नहीं। तो औरतों को अपने बारे में बेचारगी का एहसास ख़त्म करना, ये मैसेज है मेरी सारी बात का। ये जो हमारे जहनों में है ना, हम बेचारियाँ क्या करें, अरे हमारी कौन सुनता है, हम तो ऐसी हैं, वो है, ये है, ये झूठ है। रन हट, जन हट, तिरिया हट, बच्चे की जिद। तिरिया कहते हैं औरत को, हिंदू धर्म में कहते हैं तिरिया हट, यानी औरत जब किसी चीज की जिद खा लेती है ना, तो मर्द भी पीछे हो जाता है। करो जैसे बच्चे आपके नहीं देखते, पाँव रोल रोल के जमीन पे विलना शुरू हो जाते हैं। फिर माँ शर्मिंदा, क्या करूं, बाजार में आ गई हूँ, उसको ले आई हूँ, लोग कहेंगे पता नहीं कहाँ से इसको पकड़ लाई है। औरतों को जिद लगानी पड़ेगी। उसका एक गुर है, ठीक है, जब आप अल्लाह के दीन पे आते हैं, आपको कई चीजें अच्छी नहीं लगती, मैं मानती हूँ, आपको खुद से ही समझ नहीं आता कि ये मैं पहले क्या कुछ सुनती, देखती, करती, पहनती थी, लेकिन आपको फील होने लगेगा, इस बात का एहसास होने लगेगा कि मेरे और शौहर के बीच में फ्रिक्शन चल रही है। अब मुझे इन पे वो प्यार नहीं आता जब ये मुझे ऐसी ऐसी चीज़ों पे ले जाते हैं। शौहर को भी ऐसा हो सकता है, देखिए चूंकि मेरे सामने आप औरतें हैं ना, तो मैं क्या मर्दों के सीधे इस्तेमाल करूँ, मैं तो आपको ही कहूँगी ना। लेकिन मर्दों में किसी मर्द के पास दीन है, बीवी नहीं समझ रही। अब जो लाइक माइंडेड लोग हैं ना, वो कहते हैं ना कि लाइक माइंडेड जो लोग साथ रहते हैं और परिंदे इकट्ठे उड़ते हैं। हकीकत है, जब आपको दीन की समझ आती है, तो थोड़ी देर के लिए आपको अपने स्पाउस से थोड़ी सी दूरी महसूस होती है। वो आई लव यू वाला चक्कर नहीं रहा, और वो बेगम आओ एनिवर्सरी पे चले और बाल खोलो और नीली साड़ी पहनो और आओ मेरे साथ पार्टी, नहीं लगता दिल। लेकिन एक जुमला लिख लें, मोहब्बत के बगैर शादी चल जाती है। इज्जत के बगैर नहीं निभती। कभी अपनी और शौहर की दीन की कमी और बेशी को बेइज्जती करने, जुबान खोलने, चर चर तर तर बोलने का जरिया ना बनाए, निभ जाएगी। जब उनके शौहर उनको इस्लाम पर ना ला सके और फिरौन अपनी बीवी को कुफर पे ना ला सका, तो फिर आज आपने अगर कुरान पढ़ लिया, और अगर आपको अपने घरों में 19-20 दिखती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि 28वां पारा पढ़ने के बाद मुझे इस पे एक लफ्ज़ भी बोलना चाहिए। सब्र से, शुक्र से, मोहब्बत फातहे आलम। और आप वो सारी हदीसें और कुरान की आयतें जो आइडियल दौर की थी, वो इधर भी नहीं ला सकते। इतना इस्लाम क्लियर है, एक नमाजी एक बेनमाजी है, वो साथ रह सकते हैं कि नहीं, शौहर बीवी का ताल्लुक हो सकता है नहीं। इस्लाम इज़ क्रिस्टल क्लियर, मुझे भी पता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस्लाम एक मुशरिक और एक मोमिन औरत का साथ रख सकते हैं, जैसे फिरौन मुशरिक था। वो मुशरिक छोड़िए, वो तो खुद ही शरीक बना हुआ था। आज एक औरत ईमान वाली, मर्द गैर ईमान वाला, शादी नहीं होती तो बाद में कैसे रहनी है। सिंपल सा जुमला है कि जब एक औरत एक गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती, उस वो खुद कर ही नहीं सकती, वो तो मुस्लिम से भी खुद नहीं कर सकती, वो तो उसका बाप वली या कोई और कराएगा, तो फिर जब बाद में कोई मुशरिक हो गया तो शादी रह के जाती है। लेकिन ये आइडियल दौर, आज आपके मेरे घर घर की कहानी है। आज हम आइडियल दौर में नहीं हैं। आप रोज़ वेदर देखते हैं, अच्छा आज तो नॉर्मल वेदर है, नहीं आज तो बारिश हो रही है, ओहो आज तो स्नो हो रही है। तो एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ उस मसले को ओवरकम करने की ज़रूरत है। अब इसे आगे मैं नहीं बोलती, आगे चलते हैं। 12 नंबर 29, सिर्फ सेकंड लास्ट सीढ़ी पे चढ़ गए हैं, तो आज अल्लाह इसका हक अदा करवाए। एक भी आयत इसमें या अय्युहल लज़ीना आमनू की नहीं है। क्यों भला? कल अल्लाह ने आपको 15 आवाज़ें दी थी, अब आप उन सारे हुक्मों पे अमल करने की कोशिशों में हैं। हाँ, आज अल्लाह आपको जो बता रहा है वो आपको इस दुनिया की हकीकत। 12 29 का थीम, ये दुनिया एक कमरा इम्तिहान है। क्या है अभी सूरत के शुरू में बात करेंगे। आप और मैं किसी फन प्लग्स में नहीं आए हुए, ये कोई पार्टी प्लग्स नहीं है, ये फन एंड फ्रॉलिक की जगह नहीं है, ये मौज मस्ती की जगह नहीं है और थोड़ी गपशप प्लेस नहीं है, ये एक संजीदा रूम है। याद रखिए, कमरा इम्तिहान के तसव्वुर के साथ जो लाइबिलिटीज़ आती हैं उसको जहन में रखें, और पार्टी में जाना हो तो जिम्मेदारियां जो आती हैं या उसमें जो फन है, बहुत फ़र्क है। ये दो सोचें हैं असल में दुनिया में जीने के, ये दो ही रास्ते हैं। अगर आपने दुनिया को फन प्लग समझा तो आपको हर वक्त फन चाहिए, मौज चाहिए, ईट ड्रिंक बी मैरी एंड ईट एंड रिपीट एंड ईट एंड रिपीट एंड गो एंड रिपीट, वो तो सच है, वो तो सही कहते हैं कि मौज करो। लेकिन अगर आप कहीं इम्तिहान देने जा रहे हैं तो आपकी सोच संजीदा होगी, वक्त की कमी का एहसास होगा, और ABCD। तो ये दो रवैये, पहले वाले को जो संजीदगी के बगैर जी रहा है उसको आप गैर मुस्लिम कह लें, और जो ज़िंदगी को एक संजीदा हकीकत समझेगा उसको मुस्लिम कहेंगे। दूसरा थीम जो साइमल्टेनियसली इस बारे में आना है, जो मैं हर साल देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी मैं उससे बुखल नहीं करूँगी, वो क्या है, नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको, कबल इसके कि तुम दुआएं मांगो और तुम्हारी दुआएं कबूल ना हो। यह है आज हमारा नस्र मिन अल्लाह व फतहुन का थीम। सुनन इब्ने माजा की रिवायत है 4004 में, कि अल्लाह के नबी ने कहा था कि तुम जब नेकी का हुक्म देना छोड़ दोगे और बुराई से मना करना छोड़ दोगे तो फिर तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी, यानी तुम अल्लाह की नज़रों से निकल जाओगे। किसकी बात आप मानते हैं? जिसका लाड होता है, जिसका प्यार होता है, जिससे मोहब्बत होती है, या फिर जिसका रोब होता है। करना पड़ेगा जी, कह दिया जी, तो बस चुप, ये टोन हो जाती है फिर बंदे की जब अल्लाह से मोहब्बत ना हो तो। ये पूरा पारे को देखे ना तो इज्जत दावा पैकेज, कैसे सूरतों के साथ भी बताऊंगी अगर मौका मिला बीच में। लेकिन पहली सूरत मुल्क, ताल्लुक बिल्ला, सूरत मुल्क लोगों को पहले अल्लाह से जोड़िए, तकर्रुब इलल्लाह, मारफत इलल्लाह, अल्लाह का कुर्ब। हमने पता नहीं क्या सोचा, किताबें पढ़ेंगे तो अल्लाह का कुर्ब होगा। माफ़ कीजिए और डरिए उस वक्त से कि वो लोग जिनको किताबें पढ़ के भी अल्लाह का कुर्ब नहीं मिलता, वो और ही कुंद छुरियाँ बनकर अपने आप को इधर से उधर और उधर से उधर लुढ़का रहे होते हैं। तो बहरहाल ये है कि पहली चीज़ जो नए लोगों को दीन की तरफ बुलाने की है वो मोहब्बत है, अल्लाह की कुर्ब, अल्लाह के पास, अल्लाह कैसा है, अल्लाह क्या है। दूसरी सूरत नून है, सूरह कलम भी कहते हैं आप उसको, और वो क्या है, ताल्लुक बे रसूल, पूरी सूरत नबी सल्लम के ताल्लुक है। तो दूसरी चीज़ जो नए लोग, और नए लोगों में आपके बच्चे भी हैं और आपके मियाँ साहब भी हैं, जिन बेचारों को नहीं बताया गया उनका क्या कसूर है। मैं तो इतनी पिटी फील करती हूँ उन फैमिलीज के बारे में कि वो कहते हैं कल परसों में एक दर्स में तो इतनी अच्छी सिस्टम, और उन्होंने बीच में टोक दिया, कहने लगी कि हमें बताया ही नहीं किसी ने तो हमारा क्या कसूर है। जब हमें नहीं किसी ने कहा कि ऐसे कुरान पढ़ो तो फिर हमने भी नहीं अपने बच्चों को कहा, तो क्या अल्लाह अब हमें हमारी इस बात पर पकड़ेगा। अब ये एक टोन थी, कुरान में भी ये टोन है किसी की, लेकिन याद रखिएगा कि जब तक लोगों को अल्लाह रसूल का नहीं पता चलेगा तब तक वो बात नहीं मानेंगे। फिर आगे बाकी सूरतों का आपको बताती जाऊंगी, पूरी तरतीब है, पहले अल्लाह फिर रसूल फिर आखरत जन्नत जहन्नम, फिर एक किरदार है हजरत नूह चलता फिरता दाइये दीन, फिर सूरत जिन है कि कितना को पढ़ने के बाद आप दाइये दीन बन जाते हैं, और उसके बाद फिर मुजम्मिल मुदसर और उसके अंदर कुमिल लैल और क्यामनहार, और उसके बाद सूरत क्यामत, और उसके बाद सूरत दहर और मुरसलात। ये है पूरा पारा। क्या आपको अब सारी सूरतों के नाम याद है? बच्चों के नाम याद है? भांजों के नाम याद है? भतीजों के याद है? सूरतों के नाम याद कीजिए, पारों के नाम याद कीजिए, इससे इंशाल्लाह आपका इफेक्शन बढ़ेगा। मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके ऊपर आज के पारे में हम देखेंगे कि या अय्युहल मुद्दसिर कुम फानज़िर, ये कॉन्सेप्ट हमारा जो सूरत के साथ डिस्कस होगा, इसलिए या नहीं बोलती। ईमान की ताकत देखनी हो तो सूरत नूह में हजरत नूह की देखिए, लोग अपने मुंह छुपा लेते, कपड़ा डाल लेते, मुंह फेर लेते, और ये अल्लाह का बंदा उनको अल्लाह की बातें कहता रहता और फिर भी डिस्करेज नहीं हुए। हम कहते हैं हमारा तो मोटिवेशन ही लूज हो जाता है। ये कौन सा मोटिवेशन है भैया आपका? ये बाहर का चार्जर है, अंदर के चार्जर से चीज़ें चलती हैं। अंदर की सेहत होती है तो बंदे का चेहरा खिलता है, ऊपर से लगा लें जो मर्जी थोड़ी देर बाद फिर वैसे के वैसे, बल्कि और भी ख़राब। सेल्फ मोटिवेशन इज़ द रियल मोटिवेशन। हज़रत नूह के पास इतना ईमान था कि 950 साल तक भी उनके बुलाने पे कोई ना आए तो डिस्करेज नहीं हुए। इंशाल्लाह सूरत नूह में पढ़ेंगे, जो आखिरी सूरत है आज इस एतबार से कि जिसमें किसी नबी के नाम पे सूरत है। अब चलते हैं सूरत मुल्क पे, 67 नंबर की सूरह है। अब ये नाम नंबर याद करने इसलिए भी आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं कि अक्सर अरबिक मुसहफ और अरबिक तफासीर है ना, उसमें सूरतों का नाम नहीं होता, नंबर होता, आयत का नंबर, सूरत का नंबर। हमारे देसी कल्चर में ये थोड़ा सा एक नॉन फेमिलियर सी चीज़ है, तो बहरहाल ये मैं बोलती इसी सोच से हूँ कि याद हो जाए हमें। 30 आयत हैं। इसका भी मरकजी मजमून क्या है? इम्तिहानगाह। तबारक का लफ्ज़ शुरू में सूरत के आ रहा है। आपने आज इस सूरत से और मैं इस दुआ से इस पारे की तर्जमे को शुरू करने लगी हूँ, और वो क्या है कि तबारक लसी बिहदिल मुल्क, एला हम बरकत पाने के लिए तेरे नाम से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और किसी भी कामयाबी से पहले इम्तिहान का तसव्वुर होता है। जो अहसन अमल करना चाहता है वो मोहसिन इंसानियत से बेनियाज होकर रह नहीं सकता, और कोई भी काम आपका अहसन कब होगा? जब उसको सुन्नतों के मुताबिक करेंगे। पानी पीना अहसन अमल बनेगा सुन्नतों पर अमल की वजह से, खाना खाएंगे नबी के तरीक़ों पे, पेट के 3 हिस्से करेंगे सुन्नत के मुताबिक तो आपका खाना भी आसन है, और अच्छी नियत की वजह से आम काम भी आसन अमल बन जाता है। नमाज़ें तो आप और मैं सारी पढ़ते हैं, लेकिन आसन दर्जे पे पढ़ने के लिए आपको नमाज को सजाना पड़ेगा। ये पूरे पारे के अंदर आपको ये मैसेज मिलने वाला है कि जो काम करो तो खूब करो, दिल लगा के करो। अब 29वां पारा शुरू हो रहा है तो जान ना छुड़ाओ कि जल्दी से ख़त्म करके जाए। अच्छा, पूरा कुरान पढ़ लिया, अब ये नहीं थक गए, अब रातें जागनी है, ये करना है वो करना है, नहीं, आधे पौने काम से जन्नत नहीं मिलेगी। मिली भी तो बस वो शुरू के कोई 2-4-6 स्टेप मिल जाएंगे। आला जन्नतों के लिए पूरा 3, उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, पर्दा कर दे तो पूरा करो। आधा पौना पर्दा क्या है? यासन पर्दा नहीं होता। तो जो भी अमल कर रहे हैं ना, अब क्या करें फिर? ऊपर कैसे जाएं? 10वें फ्लोर पर कैसे जाएं? एक स्टेप ऊपर हो जाए, अपनी नमाज को एक स्टेप अच्छी लाएं, एक नई सूरत याद करें, और ज़रा वक्त से डिले करते थे तो वक्त पे पढ़ें। अगर मर्द घर में पढ़ते थे तो मस्जिद में जाना शुरू कर दें। मस्जिद में जाते थे तो आखिरी सफ में मिलते थे तो उससे ज़रा अगली दूसरी सफ में आ जाए, सेकंड लास्ट रोते होते, एक दिन आएगा कि वो इमाम के बिल्कुल पीछे वाली सफ में होंगे। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे तो आपका अमल बेहतर से बेहतरीन होता जाएगा, और एक दिन फिर आप भी आसन अमल करेंगे। अल्लाह ने मौका दिया, इम्तिहान से पहले इल्म चाहिए होता है, पहले उस्ताद इल्म देता है फिर इम्तिहान लेता है। हम ये इल्म जो ले रहे हैं ना, ये हमारा इम्तिहान है। और याद रखिए कि अल्लाह ताला हर वक्त नहीं आजमाता आपको मुझे। आपका ख्याल है आप दीन पे आते हैं, अल्लाह की तरफ आते हैं, तो आपके लिए ये सारा कुछ होगा, ऐसा नहीं है। आपका मेरा काम उस स्टूडेंट वाला ना हो कि जिसको पेपर पसंद ना आया और उसने एक नया पेपर बनाया। पीछे मिसाल दी थी, वही शरीयत है, वही इस्लाम है, आज चेंज नहीं होगी। कोई नया वर्जन नहीं, 2024 का वर्जन कुरान का नहीं है, आपकी मर्जी का पेपर नहीं है। शरीयत दे दी अल्लाह ने, नबी की मिसाल पिछले पारे में दे दी, क़लिमा तो हर रिमुमा हल्लाक, आपने क्यों एक हलाल को हराम किया। तो इम्तिहान देने वाले की मर्जी का होता है, आपका मेरा काम इताअत है। शागिर्द जब कमरे इम्तिहान में आके बैठता है ना, तो वो बात मानता है और बस जो पेपर आए वो कर लिया। और अगर आज की बिदात और आज का जो फेमस दीन है ना जो दुनिया में, वो हकीकत में वो दीन है कि अल्लाह का बनाया हुआ पेपर पीछे कर दो और हम अपनी पसंद का दीन बनाते हैं, ऐसे बंदे के फेल होने में कोई शक नहीं। और इम्तिहान के दौरान क्या फीलिंग आती है ज़रा सलेम है, क्योंकि आपको साइड पे ले जाने से पहले जहनी तौर पे कमरे इम्तिहान में लेके जाती हूँ। आप जैसे बैठे हैं थोड़ा सा और फासला दूर कर दें तो आपको पेपर दे दिया जाए, ऐसे ही करते थे ना। बीच में से दूसरे को निकाल के दो तीन डेस्क पे, एक पे बैठी होती थी लड़कियाँ, बीच वाली को उठा के अलग करके, तो चलो जी अलग बैठो। क्या पेपर के दौरान आपको दूसरे साथी से पूछने की इजाज़त होती है, ज़रा बताना इसका क्या जवाब है। तो गोया कि इम्तिहान के दौरान आप दूसरे के फिल्म से फ़ायदा नहीं ले सकते। आप एक कमरे में बैठी हैं और पेपर नहीं कर रही, क्या हुआ, बाद में घर चली गई, बेटा पेपर दिया नहीं, अम्मी मेरी दोस्त ही नहीं आई, मैं तो उसकी फिक्र में घुलती रही, हाय वो तो फेल हो जाएगी, माँ का तो बीपी गया। तो दौरान इम्तिहान दूसरे की नहीं अपनी फिक्र होती, ये पिछले पारे में पढ़ के आए, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। हम बहुत सारे लोगों को बता रहे होते हैं लेकिन हम खुद को नहीं बता रहे होते। सूरत मुल्क शुरू करने लगे हैं तो इसके बारे में हदीस ले लीजिए, और ये सुनन अबी दाऊद की रिवायत है अबू हुरैरा से कि कुरान पाक की एक सूरत जो 30 आयतों वाली है अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करेगी यहाँ तक कि इसकी मगफरत हो जाएगी, और वो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क भी है, यानी सूरत का नाम एक मुल्क भी, और इस सूरत को सूरत तबारक भी कहते हैं। आइए देखते हैं, इसमें हम रुकू नंबर 1 आयत नंबर 1 से 14 पे आएंगे। इसका टॉपिक लिखिए मकसद हयात। 2 रुकू हैं इसके टोटल, 30 आयतों में से पहली 14, मकसद हयात क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्ली शयइन क़दीर। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाही है। इस बरकत को महसूस कीजिए। हकीकत है कि इस कुरान में भी बरकत है क्योंकि अल्लाह का कलाम है, और जिस चीज़ के साथ अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह लग जाता है तो उसमें बरकत आ जाती है। जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे काम कौन करता है, इसको हाईलाइट कर, यह है अहसनु अमला, और वो गालिब और बख्शने वाला है। जिसने 7 आसमान ऊपर तले बनाए तो है देखने वाले, अल्लाह रहमान की पैदाइश में कोई बेजाबतगी ना देखेगा, दोबारा नजरें डालकर देख ले कि क्या कोई शगाफ भी नजर आता है। देखें आसमान को खुली जगहों पे जाके, कोई एक दरार, कोई एक सुराख, कोई होल, पुरानी छत, 100 साल पुरानी छतें तो गिरा दी जाती हैं, लिख दिया जाता है इधर से गुजरना भी नहीं तुमने। तुम्हें आसमान के नीचे से गुजरते हुए कभी ये खौफ आया कि ये चूंकि बहुत पुराना है तो ये गिर ना जाए मेरे ऊपर? अच्छा एक बार नहीं नजर आया, क्योंकि समटाइम फर्स्ट साइट जो होती है वो सतही होती है, तो क्या करो, फिर दोहरा कर दोबारा देख ले, तेरी निगाह तेरी तरफ जलील व आजिज होकर थकी हुई लौट आएगी। यानी एक बार नहीं देखा तो दोबारा देख लो, फर्जिल बसरा। बेशक हमने आसमान दुनिया को चिरागों और सितारों से जीनत वाला बना दिया और इन्हें शैतानों के मारने का जरिया बना दिया। ये 1 of 3 है सितारों का मकसद नजूल। सितारों का मकसद क्या है कि जो शयातीन आसमानों पर जाके खबरें सुनना चाहते थे उनको वहां से भगाया जाता है, और शैतानों के लिए हमने दोजख का जलाने वाला अजाब तैयार कर दिया है, और अपने रब के साथ कुफर करने वालों के लिए जहन्नम का अजाब है, और वो क्या ही बुरी जगह है। जब इसमें ये डाले जाएंगे तो इसकी बड़े जोर की आवाज सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी, करीब है कि अभी गुस्से के मारे फट जाए जब कभी इसमें कोई गिरोह डाला जाएगा। इस पे कान रखिएगा अपने इस वक्त सुनने को सामने रखते हुए। इससे जहन्नुम के दारोगे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास डराने वाला कोई नहीं आया था? नोट करें आप, ये नहीं कहा कोई पढ़ाने वाला नहीं आया था, सिखाने वाला नहीं आया था, समझाने वाला नहीं आया था, खुशखबरियां देने वाला नहीं आया था। कौन? नज़ीर। ये है नुज़ुर, पूरे कुरान का एक लफ्ज अगर कोई बोले ना, वो इंजार है, वो हम कुम फंजिर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पहली जिम्मेदारी जो मिलती है ना इंसान को, वो इंजार की मिलती है। तो क्या कोई डराने वाला नहीं है? और क्यों उनको बशीर कहें? वो तो जहन्नम में जल रहे हैं, तो उनको तो नज़ीर ही कहेंगे। तो तभी तो उनको दुख होगा कि काश हम उस नज़ीर के डरावों पर डर जाते और उसको ये ना कहते कि आप लोग डराते बहुत हैं और आप लोग तो पता नहीं क्यों दीन इतना सख्त कर रहे हैं। वो फलां तो इतना अच्छा बताते हैं, वो तो इतने लोग उनको सुनते हैं, वो तो हज़ारों उनके फॉलोअर हैं। बात तो उनकी हमें भी समझ आती है। तो वो फिर बात क्या हुआ, लफ्ज़ नज़ीर को सामने रख लीजिए। अब जवाब सुनिए, भीगी बिल्लियाँ बने हुए शर्मिंदा सर झुका पड़ा है, वो जवाब देंगे कि हाँ बेशक आया तो था। अब खामोशी, लेकिन हमने उसे जुटला दिया। और जुटलाने की वजह, वो हमारे मसलक से नहीं, वो हमारी जमात से नहीं, वो हमारे गिरोह से नहीं, पता नहीं वो कौन है, वो हमारे बाप दादा के तरीक़ों पर नहीं। और वैसे भी वो वक्त ही नहीं अच्छा लगता था, वो हमें टाइम नहीं सूट करता था, हमारे पास गाड़ी नहीं थी और हमारे पास ये नहीं, नहीं तौफीक नहीं थी, शौक़ नहीं था, तलब नहीं थी, दुआ नहीं थी हिदायत की। आने वाले आके चले जाएंगे, नू आके चले गए। आज नू को पता था कि 24 में उनका जिक्र खैर इतना होगा? पूरे पारे में देखिएगा हजरत नू की बातें। आने वाले आते हैं, बुलाने वाले बुलाते हैं, सजाने वाले महफिलें सजाते हैं, खर्चा करने वाले खर्चे भी करते हैं, हर काम करते हैं, लेकिन हमने उसे झुठला दिया। कुफर नहीं है, डिनाई नहीं किया। कुफर क्या होता है? कुफर, कफरा, तकजीब है इधर, डिनायल। और काफिर तो गैर मुस्लिम होता है ना, तकजीब करने वाला मुसलमान होता है। केयरलेस एटीट्यूड, वी डिडंट गिव दैट इम्पोर्टेंस, वी डोंट थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट। नहीं, काफ़ी नहीं, तरावियाँ नहीं पढ़ते भला, इफ्तारियाँ नहीं कराते, उम्रे का भी प्लान है आखिरी वीक में, ऐसी बातें करते हैं लोग। जहाँ तक कुरान आपके लिए नज़ीर नहीं बनता, हक नहीं अदा होता। ये जो रात तरावी में इमाम साहब कुरान का पारा पढ़ते हैं ना, मैं कहती हूँ अगर ये कुरान का पारा 7 बुखार रुकू के साथ उर्दू और उसमें नुजर के पॉइंट दे के पढ़ा रहे हो ना, हिचकियों के साथ मस्जिद रोए। लेकिन हमारा एक स्टाइल बन गया है, पहले हफ्ते में ओवरवेलमिंग, दूसरे में ठंडे, तीसरे में फिर वो चांद की तरह भटते घटते हुए नमाजी दिखते हैं, और आखिरी दिन डब्बे बटेंगे, 3-3 हज़ार लोग आएंगे एक एक मस्जिद में और ख़त्म पूरा साल। शुक्र है, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि ये कुरान सुनना ही तो अगले साल आपको फिर नज़ीर बन के सुनने पे लाता है। लेकिन हम तो कितने सालों से कुरान पढ़ते गए, पिछले साल मैं कराची में 3 दिनों में, वो एक मुसलमान मुल्क है, इस्लामिक कंट्री है, इस साल मुझे अल्लाह ने अमेरिका में डाला है, लिल्लाही मा फिस समावात, ये भी अल्लाह का वो भी अल्लाह का। मैंने दोनों मुल्कों को, यानी तकाबुल के लिए बता रही हूँ, बीच के यूरोप को भी निकाल दूँ अगर, मैंने कभी मस्जिदों को खाली नहीं देखा रमज़ान की तरावियों में, ओवरवेलमिंग। पूरे साल में भी उन मस्जिदों में इतना रश नहीं होता जो रमज़ान में होता है, तरावी और फिर अगर इफ्तारी में खाना हो तो वो, तो नमाजें तो पढ़ने लिए आज भी बहुत हैं। तो फिर किधर है नसरों में अल्लाह व फतहुन करीब? तो हदीस याद कीजिए, लोगों को बुराई से रोको, भलाई का हुक्म दो, वरना तुम्हारी दुआएं नहीं सुनी जाएंगी। अल्लाह सुन रहा है हमारी दुआएं? इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की हालत को देख के आपको लगता है कि दुआएं सुनी जा रही हैं? गजा में जो खून की होली खेली जा रही है, ये मोर देन 5 मंथ हो गए, मैंने अपने इधर रहने से सोचा हुआ, क्या इमाम काबा दुआएं नहीं करते होंगे? क्या हरम में दुआएं नहीं हो रही? मस्जिद नबी में से आहें नहीं निकल रही? पूरी दुनिया की मस्जिदें रो रो के दुआएं नहीं कर रही? तो क्यों? इसलिए कि अल्लाह को केयर ही नहीं है। हदीस है, एक वक्त आएगा अल्लाह इतना नाराज होगा कि नेकों की भी नहीं सुनेगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे माँ या बाप का मूड खराब हो जाए ना किसी एक बच्चे के स्थाने पे, तो बाकियों को भी कहते भिजो जाओ, मेरे पास नहीं आना, गेट आउट। हमने इसे झुटलाया, नसीब अपना अपना। एक दलब, एक वखा, एक कैफियत तो हो सकती है कि अल्लाह सारी दुनिया को ये फ़ायदा मिल जाए, लेकिन सबको नहीं मिलता। हर माँ चाहती है मेरे बच्चा बहुत ऊपर जाए, लेकिन हर बच्चा नहीं जाता। तो कहा हमने इसे जुटा, और हमने कहा कि अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं फरमाया, तुम बहुत गुमराह हो, यानी कहने वाले को कहते थे तुम गुमराह हो, अल्लाह नहीं इतना सख्त जितने तुम हो, ये स्टाइल था। खुद कहाँ और जहन्नुम के अंदर डले हुए हैं और ये इकरार कर रहे हैं। और अब ये सुनिए, रिग्रेट, मेरी दो पिछली बातों को भूल के ना अब इस तर्जमे पे गौर कर लीजिए। अब ये जहन्नमियों के साथ ये फरिश्तों का मुकालमा है, और कहेंगे अगर हम सुनते होते नंबर एक हसरत, या अकल रखते होते नंबर दो, तो दोस्तियों में शामिल ना होते। बस उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया, कन्फेस कर लिया, अब ये दोस्ती दूर हों, यानी जाओ, तुम्हारे इस सारे कन्फेशन का इस वक्त कोई मोल नहीं है। तुम्हारे बरक्स कौन लोग थे? बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से गायबाना तौर पर डरते थे। बिलगैब, इनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। मुझे बताइए, ये जुमला वलौ कुन्ना नस्मऊ औ नाकिलू मा कुन्ना फी असहाबिस सईर, ये कौन कहेगा? क्या ये सारे गूंगे बहरे थे? नस्मऊ मीन सुनने की ताकत नहीं थी, नाकिलू अकल नहीं, बावले थे, मजनून थे, क्रेजी थे? नहीं, वो कान थे लेकिन हक नहीं सुनना चाहते थे। दिल ख्वाहिशों के माजगा बना होता है ना, तो इंसान नहीं सुनता। ये वही है जो बच्चा स्कूल के वक्त की एज में ना पढ़े और बाद में फिर के खाए, कभी मैं माँ बाप की बात मानता, पढ़ता तो आज मैं भी कोई इज्जत वाला होता, कोई मुझे भी अकल शक्ल होती। तो याद रखिए, ये जुर्म का इकबाल आज दुनिया में कर लें। सिर्फ मुझे तो पूरे कुरान के बाद यही बात समझ आई है, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, पूरे कुरान का ये खुलासा है, ये समअप है, ये इसका एक्सट्रैक्ट है कि डर जाओ, डर जाओ, डर जाओ। और ये दो बारे अगर मुझे आपको ना डरा के गए और हम यहाँ से खुशी खुशी उठ के चले गए ना, तो हक हमने भी कोई नहीं अदा किया। आज हम डरे हुए नहीं हैं, आज हम को वो कुरान नहीं सुनना चाहते जो हमें डराए, हम वो कुरान नहीं सुनना चाहते कि जिसके बाद खौफ आए, तसल्लियों वाला, उम्मीदों वाला कुरान। ठीक है, अच्छा, शुक्र है, होप है कि आप दुनिया में सुन तो रहे अभी, बाद में क्या होगा ये बंदा अपने ऊपर लेकर सोच सकता है। तो ज़रूरत है इस बात की कि थोड़ा सा डरे। ये हर वक्त के लाड चाव भी अच्छे नहीं होते। बच्चे को अगर आप डांटेंगे नहीं ना, तो एक दिन आपके सर पे चढ़ जाएगा, फिर इतना ज़िद्दी हो जाएगा, जब तक आप उसकी बात ना मान लें वो आपको बात को पीछे नहीं करेगा। तो अल्लाह कहता है कि इस कुरान के सुन के डर दें, ए अल्लाह हमें डरा दे। ऐसे नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है कुरान की दावत के मुकाबले में, जैसे किसी को कोई टिश्यू पेपर करे पेश तो कहते, नहीं थैंक्स, आई एम फाइन, कीप इट, ये चेंज है, कीप इट, यू कैन टेक इट, मुझे नहीं चाहिए। यानी जैसे कोई भीख है, जैसे कोई टिप है। अल्लाह फरमाता है, तुम अपनी बातों को छुपाओ या जाहिर करो, वो तो सीनों की पोशीदगियों को भी खूब जानता है। क्या वही न जाने जिसने पैदा किया? द मोस्ट ब्यूटिफुल सेंस, अला यालमु मन खलक। माँ अपने बच्चे को कहती है, बेटा क्या बात है? नहीं नहीं अम्मी कुछ नहीं, माँ बेटी को कहती है। जो समझदार माएँ होती हैं वो तो बेटियों की आंखों से पढ़ जाती हैं कि इसको कोई गम है, इसके अंदर कोई आग लगी हुई है, ये मुझसे छुपा रही है, इसने कोई रोग पाला हुआ अंदर, इसको कोई बीमारी लगी हुई है। नहीं बेटा, इधर आ, मेरी तरफ, मेरे तो मुँह के, ये तेरी आंखों में पानी क्यों है? मैं नहीं जानूंगी, मैं तेरी माँ हूँ। ये आप का रब कह रहे, अला यालमु मन खलक। तुम सारे कुरान पढ़ के इधर से चले जाओगे, लेकिन मैं नहीं जानता कि किसके दिल के अंदर जलजले आ गए हैं, और कौन अंदर से टूट फूट गया, और किसके अंदर ही अंदर से मलबा गिर रहा है। कितनों को कुरान ने तोड़ दिया, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका, वाले भी बहुत से हैं। कहते चलो शुक्र है, छोड़ो, तर्जमा तो पढ़ना ही नहीं। ये साथ काम करते हुए सुनते रहते हैं ना, यकीन करें जो लोग कुरान को घर से सुन रहे हैं वो इसी माहौल में सुन रहे हैं जिसमें आप और मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहे हैं, और अल्लाह ये स्पिरिचुअलिटी हमेशा कायम रखे। फिर वो बारीक बीन और बाखबर भी हो, यानी जानता भी है तुम्हें और है भी बड़ा कीन। देखिए कुछ लोग बड़े भोले से ही होते हैं, सीधे, उनको पता ही नहीं चलता, अच्छा मुझे तो नहीं पता चला। अगर यह माँ की मिसाल है तो कई माएँ सीधी सी होती हैं, भोली होती हैं, कुछ वैसे ही बहुत एक्टिव होती हैं, उनका दिमाग ही कई चीज़ों में चलता है, उसको पता ही नहीं कि आज बच्चा स्कूल से आया है तो ये क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, ये आज परेशान कर। और मैं आप सबको कहूँगी, आप बच्चों की माएँ इधर 5-7 साल से लेकर, 7 साल लगा लीजिए, उससे बड़ा बच्चा जब स्कूल आए ना, तो आप एक बींगा मदर उसकी आंखों में देखें, वो कैसा सोच रहा है। आप कहते हैं कि शुरू में बच्चे खुलते नहीं है, नई चीज़ को देखाते ना भाई, उनको पता नहीं चलता। आप माँ ने कहा, बेटे क्या हुआ आज स्कूल में, कैसा रहा, क्या हुआ? और ज़रा सी वो कोई 2 साल आगे की उम्र जाए ना, 10 से 12, जहाँ प्यूबर्टी के असर आता है, तो फिर तो उनके बैग भी चेक करें कि कोई भूल तो नहीं आपकी बेटी को किसी ने दे दिया। और अल्लाह रहम करे, जवान बच्चियाँ जॉबों से रातों की नाइट शिफ्ट के बाद वापस आए ना, तो खुदा के लिए उनकी आंखों को देखें, आपको क्या पता वो किस हादसे का शिकार होके आएंगे आज। अल्लाह रहम करते हैं, समझदार बनिए। हमारा ये कुरान नहीं बचाएगा, ये तौरे कुरान ने मुझे आपको नहीं बचाना, अगर इंतजार नहीं, अगर हम डरे नहीं, क्योंकि वो बहुत बारीक बीन है, उसकी तो निगाह इतनी स्ट्रांग है कि वो असमी है। अंधेरी रात में स्याह पहाड़ पे काली चींटी को वो देख लेता है, वो तो जमीन के 7 तहों के अंदर के जानवरों को रिस्क दे रहा है। तुम अपनी बातों को छुपाओ या जाहिर करो, वो तो सीनों की पोशीदगियों को भी खूब जानता है। यानी तुम बड़े होशियार हो, तुम अपने फेस एक्शन तुम छुपा लेते हो, लेकिन वो तो तुम्हारे दिल की बातों को भी जानता है। क्या वही न जाने जिसने पैदा किया, फिर वो बारीक बीन और बाखबर भी हो। तो ये है आपकी ये सूरत मुल्क का शुरू का हिस्सा, अमल की बातें, फेथ इन एक्शन। हमें ज़िंदगी के इम्तिहान में कामयाब होने के लिए अल्लाह के पसंदीदा कामों को अपनाना है, ना कि लोगों के, और अल्लाह की नापसंदीदा चीज़ों से बचना है, ना कि लोगों की। कायनात के डिसिप्लिन यानी नज़्म व ज़ब्त को देखकर अपने दिन रात के मामूल को मुनज़्ज़म करना, ऑर्गेनाइज करना। और मैंने देखा है कि ये पांच नमाज़ों के औक़ात हों, रमज़ान के रोज़ों में सहरियों पे उठना और रात ईशा के बाद सोना हो, आपकी ज़िंदगी में बरकत कितनी भरता है। एक बहुत पॉजिटिव चीज़ जो रमज़ान में हमारे कल्चर में, मुस्लिम फैमिलीज़ में, इंडो पाक में देखी जा सकती है, वो ये है कि सुबह का उठना। जिन घरों में सुबह ही 9-10 बजे होती थी, अब उनको तो सुबह 6 बजे उठना पड़ रहा है ना, तो आप देखेंगे उससे दिन की बरकत भी बढ़ जाती है, चाहे बाद में फिर आप थोड़ी देर सो भी जाते हैं, तो इससे लीजिए। इसी तरह मैंने देखा है कि कुरान आपको डिसिप्लिन करता है। ये दौरे कुरान से अगले दिन पता चलेगा आपको। कई मुल्क ऐसे हैं ना कि जहाँ बिल्कुल ऑड टाइम है इस वक्त, हर एक का टाइम तो मैच हो नहीं सकता, लेकिन याद रखिए इन चीज़ों को पढ़ते सुनते वक्त अपने लिए ऑर्गेनाइजेशन लें। और अब रमज़ान चला जाएगा तो आपने ऑर्गेनाइज होना है ना, ज्वाइन सम कोर्स, और वो कोर्स ज्वाइन करें कि जो आपको मुश्किल लगे, जिस टाइम पे आपके लिए उठना मुश्किल, जिस टाइम के लिए जागना मुश्किल। इससे नाशतुवील आएगा, रातों का जागना नफ्स को कुचलता है। ये नफ्स को कुचल रहे हैं ना, तो फिर ही कुछ काम कर रहे हैं। तो और क्या सीखा कि अपनी छुपी हुई बातें यानी पोशीदा बातों को भी पाक रखना है, क्योंकि अल्लाह की नज़र उन पे भी है। सितारों से किस्मत का हाल मालूम नहीं करना, क्योंकि ये सितारों का काम नहीं है। तीन कामों में से एक आज पड़ा, दो पीछे पड़ चुके। आगे देखिए 15 से 30, रुकू नंबर 2। अल्लाह ताला की बेमिसाल कुदरतें, आंखें तो खोलो तुम्हें नज़र आएंगी। हुवल्लज़ी जअला लकुम अल-अर्ध ज़लूलन फ़मशू फ़ी मनाकिबिहा। ये जो मनाकिब, ये शोल्डर्स को कहते हैं। छोटे बच्चे जब बस ऐसे कुछ मंथ के होते हैं ना, तो अक्सर घर के जो लड़के हैं ना मर्द, तो उसको गोद में नहीं उठाते, वो औरतें उठाती हैं, वो इधर बिठा लेते हैं। ये मनाकिब है, इस जगह को मनकब कहते हैं। अल्लाह कहता है ज़मीन ने तुम्हें चिंगाड़े चढ़ाया हुआ है, तुम ज़मीन के कंधों पर बैठे हो, अब इसको इंजॉय करिए। वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को पस्त और मती कर दिया। मनो टनो वजन है इस ज़मीन पर, कितनी डाउन टू अर्थ है। अल्लाह हमें भी डाउन टू अर्थ कर दे, ताकि तुम इसकी राहों में चलते फिरते रहो और अल्लाह की रोज़ियाँ खाओ पियो। इसी की तरफ तुम्हें जी कर उठ खड़े होना है। क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो क्या आसमानों वाला तुम्हें ज़मीन में धंसा दे? जवाब दीजिए खुद को। दुआ कर लें कि अल्लाह मुझे ज़मीन में धंसा के ना मारना, पूरी एक दुआ है। मौत की 5-6 मुमकिन सूरतें जो कोई बंदा नहीं पसंद करता, उसमें से एक है कि बंदा ज़मीन में धंस के मर जाए, जिसको आप कहते हैं खसफ, सिंक होल, पूरे पूरे घर अंदर चले जाते हैं। क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि अल्लाह तुम्हें ज़मीन में धंसा दे और अचानक ज़मीन लरजने लगे? सोचिए बालाकोट का जलजला, जापान का जलजला, अल्लाह हमें बचा के रखे। या क्या तुम इस बात से इतनी डर हो गए हो कि आसमानों वाला तुम पर पत्थर बरसाए, स्टोन रेन, कौमे लूत? फिर तो तुम्हें मालूम ही हो जाएगा कि मेरा डराना कैसा हुआ, और इनसे पहले लोगों ने भी झुटलाया था, तो देखो इन पर मेरा अजाब कैसा हुआ। मज़े की बात है कि हम में से शायद 50% लोग तो ज़रूर ही सूरत मुल्क रात को पढ़ के सोते होंगे, फिर भी नहीं डरते। आपको अब समझ आ रहा है कि ये सूरत क्यों पढ़ा के सुलाया जा रहा है, कि पता नहीं सुबह उठना है कि नहीं। हम पढ़ लेते हैं पहाड़ों की तरह, लेकिन डरते कोई नहीं। अल्लाह हमें अपना डर दे दे। थोड़े से इंतज़ार के बाद कायनात पे गौर व फिक्र और तदब्बुर। अवलम यरौ इलत्तैरि फौकहुम सॉफ्फात। क्या ये अपने ऊपर पर खोले हुए और कभी कभी समेटे हुए उड़ने वाले परिंदों को नहीं देखते? इन्हें अल्लाह रहमान ही हवा और फिजा में थामे हुए है, बेशक हर चीज़ उसकी निगाह में है। सिवाय अल्लाह के तुम्हारा वो कौन सा लश्कर है जो तुम्हारी मदद कर सके? काफिर तो सरासर धोखे ही में है। अगर अल्लाह ताला अपनी रोज़ी रोक ले तो बताओ कौन है? जो फिर तुम्हें रोजी देगा, बल्कि काफिर तो सरकशी और भिदकने पर अड़ गए। अच्छा, वो शख्स ज्यादा हिदायत वाला है जो अपने मुंह के बल उंदा होकर चले। तसव्वुर मिला, पीछे से किसी को धक्का दिया जाए ना, तो वो फिर ये मुंह के बल गिरता है, यानी नाक और ये पेशानी जमीन पे लगती है। ये है जो हिदायत के रास्ते से दूर, या वो जो सीधा पैरों के बल राहे रास्त पर चला हो। कह दीजिए कि वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे कान आंखें और दिल बनाए, लेकिन कलीलुम्मा तश्कुरून। दो तरह इसका तर्जमा करूं, तुम बहुत ही कम शुक्रगुजारी करते हो, यानी शुक्र थोड़ा, और तुम बहुत थोड़े हो जो शुक्र करते हैं। इसके दोनों तर्जमे, थोड़े ही लोग हैं और थोड़ा ही शुक्र करते हैं। इज़ इट ट्रू? 100% ट्रू। अल्लाह ने कह दिया तो ये गलत हो भी कैसे सकता है? कह दीजिए कि वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैला दिया और इसी की तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। काफिर पूछते हैं वो वादा कब जाहिर होगा, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। ये भी एक मजाक उड़ाने का अंदाज था। आप कह दीजिए कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, मैं तो सिर्फ खुले तौर पर आगाह कर देने वाला हूँ। जब ये लोग इस वादे को करीब तर पा लेंगे, इस वक्त इन कुफार के चेहरे बिगड़ जाएंगे और कह दिया जाएगा यही है जिसे तुम तलब किया करते थे, एज अ फन मांगते थे। चाहे ना क्यामत, फिल्मों के नाम है क्यामत, हीरोइन को क्यामत कहते हैं, नॉवल है क्यामत के नाम पे। क्या क्यामत लग रही हो, क्या क्यामत टूट पड़ी, ये तो लग पता जाएगा जब वो क्यामत आएगी। आप कह दीजिए अच्छा, अगर मुझे और मेरे साथियों को अल्लाह हलाक कर दे या हम पर रहम करे, बहर सूरत ये तो बताओ कि कुफार को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा। आप कह दीजिए कि वही रहमान है, हम तो इस पर ईमान ला चुके और इसी पर हमारा भरोसा है। तुम्हें अन करीब मालूम हो जाएगा कि सरीह गुमराही में कौन है। आप कह दीजिए कि अच्छा ये तो बताओ कि अगर तुम्हारे पीने का पानी ज़मीन में उतर जाए, तो कौन है जो तुम्हारे लिए निथरा हुआ पानी ले आए। जवाब दीजिए, कोई नहीं ला सकता, अल्लाह के सिवा किसी की ये औकात नहीं कि वो उतरे हुए पानी को ले आए। वरना दुनिया में जहाँ ड्राउट है, जहाँ कहत पड़े हुए हैं, जिन दुनिया के हिस्सों में आप देखिए कि लोग भूख से और प्यास से बेचारे जा रहे हैं, फिर वहाँ तब तक हरियाली हो चुकी होती। तो ये है सूरत मुल्क, एक आयत इसमें ईमान से मुतल्लिक, 29। जन्नत अल्लाह की रहमत और जहन्नम अल्लाह का अदल है, याद रखिएगा। अल्लाह ताला की रहमत से जन्नत मिलेगी और जहन्नुम में सिर्फ वही लोग जाएंगे जिनको अल्लाह का अदल बुला ले। फेथ इन एक्शन क्या है? कि अल्लाह से डरकर और आजिज़ होकर रहना, जिंदगी और जिंदगी की नेमतों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना, और इस बात को कभी नहीं भूलना कि हम कमरे इम्तिहान में हैं। हर रात ये सूरत आप जब पढ़ते हैं, और पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे भी जाकर, तो इसके इस अंदाज को याद रखिएगा, इसकी आंखें खोल देने वाली हकीकत को सामने रखिएगा। फिर आप देखेंगे कि इसको रोज रात को पढ़ने वाला अगले दिन सुबह उठ के गुनाह नहीं करेगा, नामुमकिन, इम्पॉसिबल। और ऐसा बंदा अपने सर पर कोई बोझ लेकर नहीं जाएगा। और आप देखिए कि ये सूरत बताती है कि क्यामत आनी चाहिए। कल हम बैठे थे, ऐसी बात कर रहे थे, तो आपके सर कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे ज्यादा किस बात पर? तो मैंने वो सारा सुना दिया जो आप और हम अक्सर करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अला ईमान और नेमत अल इस्लाम और नेमत अल कुरान। उन्होंने कहा मैं बताऊं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्या सोच के साथ कहता हूँ? कि वो मालिक यौमिद्दीन है, जुल्म तोड़ने वाले लोगों को है कोई पकड़ने वाला। फिर समझ आता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन क्यों आता है। तो ईमान खौफ और उम्मीद के बीच की चीज़ है। ऐसे ही ना इस तरह हो जाइए अपने आप को। याद रखिए कि इंसानी दुनिया का जुल्म इंसानी आज़ादी की कीमत है। अगर ये हालात ना हों, तो फिर उन कीमती इंसानों का इंतखाब कैसे किया जाएगा जिन्होंने जुल्म के मौके पाते हुए भी जुल्म नहीं किया? सरकशी की ताकत रखने के बावजूद सरकशी नहीं की, गुनाह कर सकते थे नहीं किया, ऐशकोश हो सकते थे नहीं किया, लोगों ने उनको सताया उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुव अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। अब देखिए अल्लज़ी खलक़ल मौत पहले आता है, वल हयात बाद में, तो मौत को याद रखिए, हयात खुद ही सही हो जाएगी। जीने वालों को जाने की तैयारी करने की ज़रूरत है। अगर आखिरत में पकड़ ही नहीं होनी तो फिर ये सारी दुनिया के बनाने का सारा नक्शा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आखिरत के इंजाम को सामने रखिए। आपको मुझे जो इरादा दिया ना, विल पावर, इसके साथ आप गुना छोड़ें, फिर आपको नंबर मिलने हैं। मजबूरन तो सूरज चांद सितारे भी हैं, उनको अजर भी कोई नहीं ना उनका गुना। तो जितना ज़्यादा इस सूरत को गौर व फिक्र के साथ करते रहेंगे, और ख़ास तौर पर परिंदों के उस्ताद आपके सामने हैं, जब वो चल सकते हैं फिर सकते हैं, तो फिर आपको मुझे भी इस ज़िंदगी से शऊर की ग़िज़ा लेनी है। और जब याद रखिए कि लोग दलील से नहीं मांगते ना, तो फिर अल्लाह ताला उनको दिखाता है। पानी की कीमत आप देखिए, पानी यहाँ $1 की एक बॉटल मिलती होगी शायद छोटी वाली। पानी की कदर सिर्फ वो करेगा जिसको सहराओं में खड़ा करके पानी की नेमत से महरूम कर दिया जाए। एक औरत अपनी नाबीना दोस्त के साथ कहीं खड़ी थी, दोनों कहीं बाहर गए घूमने के लिए। जो ब्लाइंड सिस्टर थी उसने कहा, क्या देख रही हो, क्योंकि नथिंग न्यू, एवरीथिंग इज सेम। उसने कहा, अच्छा 1 घंटे के लिए मुझे अपनी आंखें दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी तुम क्या देख रही हो। तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। आज अक्सर लोगों का नेमतों के साथ यही तस्करा है। बाद में हम होके भरते रोते धोते, हाय कदर नहीं की, हाय माँ बाप का ये नहीं देखा, हाय शौहर की बात नहीं मानी, अच्छे ही थे बेचारे फौत हो गए। हम नेमत कहते ही उसके जो चली जाती है। खुशकिस्मत कौन है जो मौजूद नेमत की कदर करें। उन्हीं नेमतों में से एक कदर वाली चीज़ अल्लाह ने मक्का वालों के पास भेजा, अपना रसूल।